ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद हुसामुद्दीन मतीन से उर्दू में इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मावनवाजों से अपील की कि वो तशद्दुद के रास्ते को तर्क करें और अवामी जिंदगी के मरकजी धारे में शामिल हों। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन TDHRC ने तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हिदायत दी है कि वो कल निजामाबाद जिले में मुबैना बदनाम जमाना मुजरिम शेख रियाज को इनकाउंटर करने की वजह बनने वाले हालात के बारे में तफसीली हकायक पर मबनी रिपोर्ट पेश करें। भारत राष्ट्र समिति BRS के रुकन असम्बली हरीश राव ने तेलंगाना हुकूमत पर रियासत में बस्ती दवाखानों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। और महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मशरिक खलीज बंगाल पर कम दबाव वाले इलाके की वजह से आज और कल तेलंगाना के कई अजला में अलग अलग मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। और पेश हैं खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मावनवाजों से तशद्दुद से दस्तबरदार होने की अपील की है और अवामी जिंदगी के मरकजी धारे में शामिल होने का मशवरा दिया। आज गोशा महल में मुनक्किदा पुलिस यादगारी दिन के प्रोग्राम में मेहमान खसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कभी तेलंगाना में माओनवाज सरगर्मियां उरूज पर थीं, लेकिन महकमा पुलिस की अनथक कोशिशों से अब अमन कायम हुआ है। उन्होंने कहा कि कई अहम माओनवाज लीडरों ने हथियार डाल दिए और दूसरों से मुतालबा किया कि वो इसकी पैरवी करें और मुल्क की तरक्की में शराकत दार बने। उन्होंने तेलंगाना पुलिस फोर्स की बेलौस खिदमात और कुर्बानियों की सताइश की, जो मुल्क के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर खड़ी है। इस साल मुल्क भर में 191 पुलिस अहलकारों ने, जिनमें 6 तेलंगाना के भी शामिल हैं, ड्यूटी के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने कांस्टेबल प्रमोद के अहलखाना को 1 करोड़ रुपए की एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया, जो निजामाबाद में एक मुजरिम के हाथों हलाक हो गए। वजीर आला ने ऐलान किया कि मुतवफ़ी कांस्टेबल के खानदान को रिटायरमेंट की उम्र तक तनख्वाह मिलेगी, खानदान के एक फर्द को सरकारी मुलाजिमत दी जाएगी और 300 मुरब्बा गज रिहायशी जमीन भी मख्तस की जाएगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुल्क की बैरूनी और दाखिली सलामती को पेश नज़र रखना पहले से अब कहीं ज़्यादा अहम है, क्योंकि कौम 2047 तक विकसित भारत के हदफ की तरफ बढ़ रही है। नई दिल्ली में यौम पुलिस यादगार तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि फ़ौज और पुलिस मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं, लेकिन उनका मिशन एक ही है, कौम की हिफाजत करना। उन्होंने मुसलह अफवाज और पुलिस फोर्स को कौमी सलामती के अहम सुतून करार दिया।
मैं स्वयं गृह मंत्री रह चुका हूं, मुझे बेहद नजदीक से पुलिस के कामकाज को देखने का अवसर मिला है। रक्षा मंत्री के रूप में मुझे सेना के कामकाज को भी नजदीक से देखने का अवसर मिल रहा है। सेना हो या पुलिस, ये दोनों ही देश की सुरक्षा के अलग अलग पिलर्स हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि दुश्मन कोई भी हो, चाहे सीमा पार से आए या हमारे बीच छिपा हो, जो भी व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा है वह एक ही आत्मा का प्रतिनिधि है।
वज़ीर दिफा ने पुलिस की तारीफ़ की कि वो जरायम की रोकथाम की अपनी सरकारी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है और माशरे में एतमाद को बरकरार रखने के अपने अखलाकी फ़राइज़ को पूरा कर रही है। तेलंगाना इंसानी हकूक़ कमीशन TDHRC ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना श्रीधर रेड्डी को आज हिदायत दी कि वो तफसीली हकायक़ पर मबनी रिपोर्ट पेश करें, जिसमें कल निज़ामाबाद ज़िले में एक मुबैना बदनाम जमाना मुजरिम शेख रियाज को हलाक कर दिया गया था। कमीशन ने 24 नवंबर तक किसी भी मजिस्ट्रेट या जुडिशियल इंक्वायरी की सूरत हाल और FIR और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कापियों के साथ साथ इनकाउंटर मौत के बारे में सुप्रीम कोर्ट और NHRC के रहनुमा खतूत की तामील करने का भी मुतालबा किया है। भारत राष्ट्र समिति BRS के रुकन असम्बली और साबिक वजीर T.हरीश राव ने तेलंगाना हुकूमत पर रियासत में बस्ती दवाखानों को नजरअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने श्रीलंगमपल्ली में बस्ती दवाखाने का दौरा किया और तिब्बी अमले और मरीजों से बातचीत की। वहां अमले के कुछ अरकान ने शिकायत की कि उन्हें तनख्वाहें बराबर नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ शराब की दुकानों से महसूल वसूल करने में दिलचस्पी रखती है। उन्होंने शिकायत की कि बस्ती दवाखानों में अद्वियात की कमी है और हुकूमत ने बस्ती दवाखानों के कामकाज का एक बार भी जायजा नहीं लिया। BJP उम्मीदवार लंकला दीपक रेड्डी ने जुबली हिल्स असेंबली हलके से ज़िमनी इंतखाब के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने आज MRO ऑफिस शेखपेट में पर्चे नामजदगी दाखिल किया। ज़िमनी इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख थी। कांग्रेस की तरफ से नवीन यादव और BRS से M. सुनीता ने पहले ही अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI 22 अक्टूबर को नामजदगियों की जाँच करेगा, जबकि कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख जुमा यानी 24 अक्टूबर है। ये खबरें आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। AIMIM के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा कि उनकी पार्टी 11 नवंबर को होने वाले जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की हिमायत करेगी। हैदराबाद में नामनिगारों से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पार्टी ने कांग्रेस उम्मीदवार की हिमायत का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि नवीन यादव नौजवान हैं और जुबली हिल्स हल्के में तरक्की ला सकते हैं। वनपर्ति जिले के एक रिहायशी राजेंद्र कुमार ने कहा कि GST 2.0 इस्लाहात लोगों को खास तौर पर तिबी मसाइल से दो चार लोगों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर सामने आई है। उन्होंने कहा कि अद्वियात की कीमतों में कमी लाना खास तौर पर कमजोर तबकात के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि बचाई गई रकम को गजाइत से भरपूर खुराक खरीदने में इस्तेमाल किया जा सकता है।
Especially, I want to make a mention of benefits for people with medical issues. Medicine expenses has come down considerably, and it's a great relief, especially for weaker sections and economically backward sections of the society, as the saved money can be used for purchase of nutritious food and also to meet their other expenses to lead a dignified life.
ریاستی قبائلی وزیر ادولری لکشمن نے BRS لیڈر اور سابق وزیر ہریش راؤ کے کابینہ کی کارروائی سے متعلق حالیہ ریمارکس پر تنقید کی۔ آج نامپلی میں گاندھی بھون میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے لکشمن نے ہریش راؤ کے الزامات کی ساکھ پر سوال اٹھایا اور ان کے بیانات پر غیر مشروط معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ افواہیں پھیلانا اور کابینہ کی امور کے بارے میں گمراہ کن بیانات دینا جرم کے مترادف ہے۔ لکشمن نے BRS قیادت پر بھی تنقید کی، ان پر کابینہ کے فیصلوں پر نامناسب تبصرہ کرنے کا الزام لگایا۔ واضح رہے کہ ہریش راؤ نے الزام لگایا تھا کہ ریاستی کابینہ میں سراسر افراتفری ہے، کیونکہ یہ دو کیمپوں میں بٹی ہوئی ہے جو ایک دوسرے کے خلاف جا رہے ہیں۔ ریاستی آبکاری وزیر جوپلی کرشن راؤ نے آج کہا کہ شراب کی دکانوں کے ضوابط کسی ایک حلقے پر نہیں بلکہ پوری ریاست پر لاگو ہوتے ہیں۔ وزیر موصوف منگڑو کے MLA کوماٹی ریڈی راج گوپال ریڈی کے مینڈیٹ کا جواب دے رہے تھے کہ منگڑو میں شراب کی دکانیں صرف شام 4 سے 9 بجے کے درمیان چلنی چاہیے۔ حیدرآباد میں حکومت کے زیر انتظام سروجنی دیوی آئی اسپتال میں پٹاخوں کی وجہ سے آنکھوں کو چوٹ آنے والے 54 مریضوں کا علاج کیا گیا ہے۔ اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ مودینی پندرپورکر نے کہا کہ تقریباً 80% کیسز کا تعلق مخصوص پٹاخوں سے تھا، جو تہوار کے دوران آنکھوں کو شدید ترین چوٹ پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 دنوں میں کل 54 افراد آنکھوں میں چوٹ کے ساتھ اسپتال رجوع ہوئے، ان میں سے 23 معاملات سنگین نوعیت کے ہیں جہاں بینائی متاثر ہوئی ہے۔ دریاسنا تلنگانہ اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ فائر سروس ڈپارٹمنٹ کو دیپاولی کے دن ریاست بھر میں 44 فائر کالز موصول ہوئے، جن میں 18 گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC حدود سے تھے۔ فائر کنٹرول روم کے حکام نے بتایا کہ کل 38 معاملات میں چھوٹی آگ 3 درمیانے درجے اور 1 سنگین درجے کے طور پر بتائی گئی ہیں، جبکہ فائر کنٹرول روم کے اہلکار نے اس کی تصدیق کی ہے۔ حیدرآباد میٹرولوجیکل سینٹر کے مطابق کم دباؤ والا علاقہ جنوبی انڈمان سمندر کے اوپر بننے کی وجہ سے جنوب مشرقی خلیج بنگال میں ڈپریشن شدت اختیار کر گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اور کل تلنگانہ کے کئی اضلاع میں الگ الگ مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ اس دوران زیادہ تر اضلاع میں ہلکی سے درمیانی بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے دفتر نے کہا کہ چند اضلاع میں الگ الگ مقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے، جبکہ اگلے 3 دنوں میں ریاست کے کچھ حصوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کی بھی توقع ہے۔ جمعرات کو تلنگانہ کے اضلاع کھمم، نلگنڈا، سوریا پیٹ، محبوب نگر، ناگر کنول، ونپرتی، نارائن پیٹ اور جوگلامبا گدوال میں الگ الگ مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں 1 یا 2 مقامات پر بارش درج کی گئی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے ماو نوازوں سے اپیل کی کہ وہ تشدد کا راستہ ترک کر دیں اور عوامی زندگی کے مرکزی دھارے میں شامل ہو جائیں۔ تلنگانہ ہیومن رائٹس کمیشن TGHRC نے تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ کل نظام آباد ضلع میں مبینہ بدنام زمانہ مجرم شیخ ریاض کو انکاؤنٹر کرنے کی وجہ بننے والے حالات کے بارے میں تفصیلی حقائق پر مبنی رپورٹ پیش کریں۔ بھارت راشٹر سمیتی BRS کے رکن اسمبلی اور سابق وزیر ہریش راؤ نے تلنگانہ حکومت پر ریاست میں بستی دواخانوں کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مشرق خلیج بنگال پر کم دباؤ والے علاقے کی وجہ سے آج اور کل تلنگانہ کے کئی اضلاع میں الگ الگ مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ آکاشوانی سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔